जैसे भजन में आपने सुने हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने अंतिम पद में कहते हैं, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। हम लोग सो भजन करते हैं, हमारा मन में मैटेरियल डिजायर नहीं हो तो स्पिरिचुअल डिजायर तो है कि हम भगवत प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ तो नहीं, गोलोक वृंदावन, उसके ऊपर और कुछ हो तो निकुंज अगरा अगरा कुछ और प्राप्ति हो जाए। लेकिन ठाकुर नरोत्तम दास क्या बोलते हैं, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, भक्तों के संग चाहते हैं, है ना नहीं। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म में है यही अभिलाष। ये जन्म जन्म में कहना मतलब और बार जन्म लेना चाहते हैं, उन्होंने नहीं जाना चाहते, उसे छोड़ करते ही भक्तों के संग चाहते हैं। ऐसे भक्तों के संग गोलोक वृंदावन से वैकुंठ से भी और फायदामंद है, इसीलिए तो आचार्य लोग चाहते हैं, नहीं तो क्यों चाहेंगे। तो ऐसे एक भक्त जिनके संग नरोत्तम दास ठाकुर जैसे आचार्य चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, दया कर श्री आचार्य, आचार्य श्रीनिवास आचार्य को क्यों प्रार्थना करते हैं कि रामचंद्र कविराज के गुरुजी हैं श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य के गुरुजी है गोपाल भट्ट गोस्वामी। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके प्रशिष्य दोनों की तिथि है। तो श्री रामचंद्र कविराज, उनके पिताजी का नाम था चिरंजीव सेन। चिरंजीव सेन के नाम प्रसिद्ध है खंडवासी वैष्णव के नाम से, श्रीखंड जहां मुकुंद रघुनंदन नरहरि चिरंजीव सिलोचन, ये जब शाखा गणन में आता है तो कविराज गोस्वामी इनका नाम खंडवासी वैष्णव के नाम से गिनते हैं। खंडवासी वैष्णव महाप्रभु के परिक्रम में प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इनमें इतने गौर निष्ठा था, इतने गौरांग महाप्रभु प्रति उन्होंने समर्पित थे, वो तो कृष्ण कीर्तन कभी करते ही नहीं थे ना। उनके लीडर थे नरहरि ठाकुर। नरहरि ठाकुर ऐसे भक्त थे, गौरांग महाप्रभु आप सब जानते हैं, कोई अगर गौरांग महाप्रभु को बोलते हैं आप भगवान, बोलते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, मैं लड़का हूं जगन्नाथ मिश्र का, मुझे क्यों ऐसा बोलते, कभी मानते नहीं थे। और कोई उनके नाम से इसे भगवत मना करते थे, कोई उनके पैर छूने से फास्टिंग करते थे, मान नहीं लेते थे महाप्रभु। लेकिन केवल एक श्री नरहरि ठाकुर थे जिनका ये अधिकार था, गौरांग महाप्रभु का सामने गौर कीर्तन करते थे, और उनको रोका नहीं जा सकता, रोकेंगे नहीं। इसलिए आप जानते हैं जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में महाप्रभु का पार्टी सब जाते हैं, गौरांग पार्टी सब नवदीप से, तो महाप्रभु उनको 7 ग्रुप बनाते हैं, 4 ग्रुप फ्रंट में रथ के, 2 साइड में 2, पीछे 1। ये पीछे क्यों रखते हैं भाई, साइड में कोई देखेंगे, पीछे तो कोई खड़ा रहेगा नहीं रथ में, सब आगे रहते हैं। क्यों पीछे रखते हैं, क्योंकि महाप्रभु सब पब्लिकली अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो खंडवासी वैष्णव ग्रुप, वो तो जगन्नाथ की कृष्ण की गुणगान करेंगे नहीं, वो तो सामने सामने गौर कीर्तन करेंगे, तो बोलेंगे तुम पीछे जाओ, तुम सामने नहीं आ सकते, साइड में भी नहीं, बिल्कुल पीछे जाओ। बोले हम पीछे भले जाएंगे लेकिन और किसी का नाम नहीं गाएंगे, आपका नाम गाएंगे ही गाएंगे। महाप्रभु बोले भाई क्या करे, तुम मानोगे नहीं, जाओ। उनके सामने उनके कीर्तन करते थे, वो बोलते थे मैं मना करता हूं ना, तुम मना कर से क्या होगा, कृष्ण के नाम, बोले कृष्ण अभी नहीं है, अभी आप हो। तो इसलिए उनके था, तो उन्होंने इतने, उनका जो विग्रह का नाम नरहरि ठाकुर के प्राण गौर, उनके प्राण गौर थे। आज हमें भजन गाने के लिए निकाले थे, लेकिन वो कोई अपना सॉन्ग बुक पे भाग नहीं है, सामने से आप कैसे गाएंगे। तो वो नरहरि रघुनंदन मुकुंद चिरंजीव एक ही गांव में रहते थे श्रीखंड में। ऐसे चिरंजीव सेन के गांव का नाम तो कुमार पड़ा था, लेकिन उनके विवाह हो गया था दामोदर कविराज, तो दामोदर कविराज उनको अपने घर में घर ज्वाइन करके रखे। दामोदर कविराज बड़े सख्त थे, बड़े कवि थे प्रसिद्ध, वो सख्त थे। और उनके बेटी जो थी परम वैष्णवी थी, चिरंजीवी सेन की पत्नी। तो चिरंजीवी सेन वही खंडवासी वैष्णव के साथ में उन लोग जो सुलोचन मुकुंदर रघुनंदन नरहरि उनके साथ में हर साल जाते थे श्री महाप्रभु के दर्शन करने, उनके नृत्य करने, उनके पार्टी में थे। तो उनके कृपा पात्र थे चिरंजीवी सेन। चिरंजीवी सेन को खंडवासी वैष्णव बहुत प्रेम करते थे। उनका नाम प्रसिद्ध है चिरंजीवी सेन का नाम। वो पति पत्नी दोनों बहुत गौरवगत प्राण थे। तो महाप्रभु की कृपा से उनके दो रत्न समान पुत्र हुए चिरंजीवी सेन के, एक थे रामचंद्र एक थे गोविंद। रामचंद्र कविराज, गोविंद कविराज, दो भाई थे, दो पुत्र थे, ये दोनों ही रत्न थे। तो उनके पिताजी के देहांत हो गया तो उन्होंने अपने पहली गांव में फिर आ गए अपने गांव में, क्योंकि उन्होंने दामोदर कविराज ही बड़े सख्त उपासक थे, तो उसी गांव में आकर रहने लगे। कहते हैं कि रामचंद्र कविराज बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, दिखने में देवता जैसा शरीर था उनका और रूप जैसा था, गुण भी ऐसा था। तभी जमाने में नवदीप तो हेडक्वार्टर था पूरे भारतवर्ष में एजुकेशन का, विद्या का, तो यहां मुख्य करके न्याय मीमांसा और तर्क आदि से पढ़ाया जाता था। तो इस सब में हाई डिग्री था रामचंद्र कविराज की, बड़ी पीएचडी किए थे उन्होंने यंग समय में। तो जब उनका और प्रसिद्ध थे ऐसे, उनका पेशा फिजिशियन था, डॉक्टर भी थे और कवि भी थे। तो जब उनका विवाह हुआ, विवाह करके जब विदा होते थे, पहले जमाने में ये फोर व्हीलर नहीं हुआ करता था, मोटर गाड़ी, आजकल ब्रज में तो सब मोटर गाड़ी में नहीं जाते, घोड़े में चढ़ के जाते, रेंट लेकर के गधे घोड़े लेकर जाते हैं, खच्चर उसके ऊपर वो बर जाता है साल में जीवन में एक बार जाता है गधे के ऊपर चढ़ करके शादी करने के लिए, क्योंकि घोड़े तो होते नहीं आजकल, तो इसी से डुप्लीकेट घोड़े। तो लेकिन बाकी जगह में कार वगैरह में चले जाते हैं डेकोरेशन करके, लेकिन पहले जमाने में पालकी हुआ करता था, पालकी सवारी, जो ब्राइड जाता था सवारी में, ब्राइड ग्रूम पालकी में ऐसे जाते थे। तो विवाह करके रामचंद्र कविराज जो सवारी पालकी लेकर के लोग जाते थे कहार ढो करके, तो पैदल में जाते थे। तो रास्ता में जाजी ग्राम आता है, जाजी ग्राम श्री श्रीनिवास ठाकुर के सिपाठ है, वही उनके मठ है। वो रास्ता किनारे में आज भी तेंतुल एक इमली के पेड़ है, तेंतुल वृक्ष, तो उसके पास में बारंडा में बैठ करके कुछ अपने शिष्यगण के साथ कृष्ण चर्चा करते थे, क्योंकि कृष्ण भक्तों का तो एक ही काम होता है, कुछ बात करेंगे तो कृष्ण की बात करेंगे। तो इसी समय में वो जा रहा था सवारी, तो उनको देखे, श्रीनिवास आचार्य का नजर पड़ा, इतने सुंदर देवता जैसा रूप है, इतने सुंदर, और पालकी में बैठकर के जा रहा है विवाह करके। तो उनके नजर पड़ा उनके ऊपर और उनके भी नजर उनका, दोनों दोनों को देखे। इसी घटना से एक प्रमाण प्राप्त होता है कि जन्म जन्म गुरु सही, ये जो बात कई बाकायदा पक्का है, बाकी सब बदल बदल सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो बदलते नहीं है, वो आपके पीछे पड़ेंगे जब तक आपको उद्धार नहीं करेंगे। आप कितने जन्म लेंगे किसी किसी जन्म में, वो भी आपके पीछे पड़ कर आएंगे और आपको उठा कर लेके जाएंगे। तो जन्म जन्म गुरु से, तो लगता है उनके पहले जन्म का रिश्ता था कई जन्म के। तो जैसे पहली बार श्रीनिवास आचार्य वो बैठे थे अपने घर के बरामदे में, उनके नजर पड़ा, वो बर के रूप में शादी करके पालकी में बैठकर रामचंद्र कब्र उनके ऊपर नजर पड़ा, उनको देखे और उनको भी नजर उनके ऊपर पड़ा, तो दोनों दोनों का एक दृष्टि से पूर्व स्मृति जागृत हो गया, एक दिन भावावेश में आ गए, उनके शरीर रोमांचित हो गया दोनों का। तो पूछने लगे श्रीनिवास आचार्य आचार्य उनको, ये कौन है इतने सुंदर व्यक्ति, शादी करके जाए बर्बाद हो रहा है, ये जा रहे थे कर। तो उनके बारे में पूछे, लोग बोले ये तो प्रसिद्ध, जानते नहीं, ये तो डॉक्टर साहब है, रामचंद्र है, बड़े फेमस डॉक्टर है, प्रसिद्ध है, दामोदर पंडित के पोता है वो, ऐसे है। लेकिन दामोदर पंडित तो थे शाक्त, लेकिन ये अभी थोड़ा है शक्ति उपासक, ये भी है पूजा करते। तो भी रामचंद्र कविराज भी सुने कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं, तो एक दृष्टि देखने के बाद में पालकी तो चला गया, लेकिन उनका मन रह गया इधर, उनके चित्त छोड़ गए। भक्त लोग चित्त चोर, जैसे कृष्ण के उनके पार्टी के लोग होते ना, वो भी चोरी करते हैं, वो भी हृदय चोरी करने में उनका ट्रेनिंग लिए हैं, तो हृदय चोरी कर लिए उनके। तो पालकी में कन्या के साथ सवारी के साथ चले गए, वहां जो घर पहुंचे अपने कुमारपड़ा में, बहुत बड़ा उनका आगवानी किया गया वर कन्या का, और बड़े बाजा गाजा बजा करके उन सब किए, और लेकिन उनके मन तो जाजीग्राम में रहा था रामचंद्र कविराज के। उनको स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ, बड़े रखा, लेकिन वो कैसे दिन बिताए, रात भर भी उनके मन नहीं लग रहा था, मन नहीं तो तन क्या करे, शरीर तो केवल था ही, लेकिन मन तो सजीग्राम में छोड़कर आए थे। रात में उठ करके पेशाब करने बहाने में पैदल में चल पड़े, बिना चप्पल पहने जाजीग्राम चल दिए, चल करके वापस। सुबह ढूंढ रहे हैं कहां गए भाई, अभी शादी करके आए थे, कल चोटी होगा, हाँ चतुर्थी रात होने से पहले ही गायब, बर गायब हो गए। अब जाकर जाजीग्राम में रात किसी के घर में, बारह कोई ब्राह्मण के घर में रुके, क्योंकि तभी जमाने में गेस्ट हाउस वगैरह ऐसा होता नहीं था, कहीं रुक करके दूसरे दिन सुबह उनके घर में पहुंच गए, श्री श्रीनिवास आचार्य के घर के सामने। और जैसे श्रीनिवास आचार्य देखे, क्योंकि पहले तो देख करके सोच रहे थे उनके बारे में, वो भी रात को सोच रहे थे कि ये लड़के कैसे हो रहा है, तो वो भी सोच रहे थे। दोनों को दोनों सुबह सुबह मिलन हुआ, चतुर्थी के दिन वर कन्या का मिलन होना चाहिए, लेकिन ये चतुर्थी दिन में ये गुरु शिष्य का मिलन हुआ, पहले जन्म शिष्य था, मिलन हुआ। मिलन होकर के वो तो तभी जमाने में तो स्मार्टफोन क्या, ये फोन भी नहीं था, ये ट्रंकल फोन भी नहीं था, ये जो घुमाने वाला वो फोन भी नहीं था, तो कैसे पकड़ेंगे, पुलिस स्टेशन भी नहीं हुआ करता था, 5 साल पहले की बात है। तो ढूंढ ढांड करके पकड़ नहीं पाते, गायब हो गए रात में, और यहाँ उनके साथ मिल करके उनके घर में रहने लगे, रो रो करके उनके चरण में समर्पण किया अपने आप को, बोले मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी उनको उठा करके गले लगाए, घर में रखे और पास में बैठ करके बातचीत किए। तो उन्होंने तो हाईली एजुकेटेड थे रामचंद्र कबीरा, जब बातचीत किए, बातचीत में श्रीनिवास आचार्य को लगा कि बहुत विद्वान पुरुष है, जो भी बात कहता है ठोस प्रमाण के साथ उनको चाहिए, ऐसे तैसे गलने से नहीं मानेगा, क्योंकि न्यायिक है, परम न्यायिक थे, तार्किक थे, उनको तर्क के न्याय से तुरंत काट देते थे बात को। तो श्रीनिवास आचार्य को बहुत प्रसन्न हुआ, यद्यपि उनके खंड जो बात कहते थे उनको तुरंत काट देते थे विद्वता कारण, बहुत खुश होते थे, बोला हाँ पक्का अच्छा पढ़ा लिखा है। फिर बाद में उनको सिखाए, प्रसन्न मन में फिर उन्होंने लिखा, बोले इतने सारे पोथी पढ़ करके बड़े न्यायिक और मीमांसक और तार्किक हो, लेकिन जीवन के लक्ष्य क्या है, वही मार खाएंगे। बोले ये सब को पढ़ करके जीवन के लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकता, जीवन के लक्ष्य तो केवल भागवत ग्रंथ में प्राप्त होता है, उसको नहीं पढ़ा। तो उनसे सरेंडर किए, तो उनसे भागवत पढ़े और गोस्वामी ग्रंथ पढ़ने लगे, वही रह गए, उनके पास रहकर पढ़े शरणागत। क्योंकि जो विद्वान पुरुष होते हैं तो एक पॉइंट में समझ जाते हैं, वो तर्क के संगत है, जो तर्क के साथ समझा दिए कि यही है, फिर तुरंत रिजेक्ट करके उनको स्वीकार कर लेंगे, और फिर और सुन, एक बार स्वीकार कर लिए, पूर्ण समर्पण कर लिए, करके उनके पास रह के पढ़े, पढ़ करके उनके दीक्षा ग्रहण किए। और बाद में पता चला, अरे बर तो आकर यहां फंसा हुआ है, वहां चेंज चांज हो गया है, साक्त थे, मतलब ऐसा था उनका हेडलाइट, अभी ऐसे हो गया, ओरिजेंटल हो गया, पहले वर्टिकल था, नहीं पहले ओरिजेंटल था, वर्टिकल हो गया अभी। तो फिर उनको लेकर के गए, दीक्षित हो जाने के बाद में लेकर गए, शादी शुदा कर इसे कैसे घर रहेगा, गांव में सब निशा वगैरह लेकर गए, बोले चलो। और वापस गए घर में जाकर है, अपने परिवार में जाकर रहे, लेकिन जो गुरुजी से प्राप्त किए थे वही ग्रंथ अध्ययन भजन काम में लेने लगे। डॉक्टरी करते थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, क्लिनिक भी था, लेकिन अपने भजन पूजन अध्ययन करते थे। तो एक दिन गंगा के किनारे उनके घर था, कुमार पड़ा, गंगा स्नान करके आ रहे थे तो शिव मंदिर था। इस शिव मंदिर में उनके दादाजी दामोदर पंडित बड़े पूजा उजा करते थे, शिव और चंडी के साधक थे। तो जो यहाँ के जो बड़े बड़े शाक्त दामोदर पंडित के फॉलोअर सब थे, वो बोले देखो उनके नाती है, ये क्या हो गया, तिलक चेंज कर दिया, ये सब द्वादश तिलक धारण करके राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहा है, ये कहाँ हर हर महादेव नहीं करता, जय माता दी नहीं, कुछ नहीं, ये क्या सब। तो उनको बुलाए, बोले अरे रामचंद्र ये क्या हो गया, तुम्हारे पैतृक नीति पुति से छोड़ दिया, इस शिव मंदिर स्नान कर गंगा स्नान करके आया, यहाँ जल न चढ़ा करके, यहाँ दर्शन न करके सीधा चला जा रहा है, हरे कृष्ण जप करके ये क्या कर रहा है, ये सब। तो उनको बोला, बोले इधर आओ, सब पूरे बैठे थे सब शाक्त पंडित गण, तो उनको बैठा कर बोले ये से नीचे कर्म क्यों कर रहा तुम्हें, ये इतने उन्नत कार्य ये सब छोड़ करके ये हरे कृष्ण जप रहा है, ये क्या है। तो वहीं पे उनका साथ, वो स्नान करके आ रहे थे, घर नहीं आए, वो इनको साथ तर्क शुरू हुए, तो महातार्किक थे, वो जानते थे, डिग्री था उनका, तो उनसे युक्ति तर्क किए। और पहले तो पढ़ करके गए थे उन्हें भागवत सिद्धांत, भागवत सिद्धांत के सामने वो जो बड़े बड़े जो तार्किक बैठे हुए थे जब शाक्त गण, उनके साथ में तर्क शुरू हुआ। बोले कि ऐसा नहीं कि मैं शंकर जी की उपेक्षा कर रहा हूं, बोले शंकर जी की उपासना कर रहे हैं, जल नहीं चढ़ा रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा, ना केवल जल चढ़ाने से प्रणाम करने से नहीं, शंकर जी को प्रसन्न जैसे करना, जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे प्रसन्न करते हैं, कैसे प्रसन्न करते हैं, बोले शंकर जी ब्रह्मा जी ये सब गुणावतार है भगवान कृष्ण के, कृष्णा मूल है, उनके ये गुण है, ये रजगुण के अवतार ब्रह्मा है, तमगुण के अवतार ये सब शंकर है, और मूल तो अवतारी कृष्ण है, जब मैं कृष्ण को उपासना कर रहा हूं, उनके भजन कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिक वो प्रसन्न होंगे ही। जैसे कोई पेड़ के कितने ब्रांच हो, फूल हो, फल हो, तो सब में जाकर पानी डालते हैं क्या, इंजेक्शन देते हैं, नहीं, जड़ में पानी देने से सबकी सिंचाई ऑटोमेटिक होता है। बोले ठीक है, इसी प्रकार मैं कृष्ण भजन करता हूं तो सबका भजन हो जाता है, सब प्रसन्न अपने आप हो जाएंगे। इसी युक्ति अकाट्य युक्ति दिए, बोले इसलिए मैं जब कृष्ण की भजन करता हूं तो शंकर अपने आप प्रसन्न होते हैं। प्रमाण दिए, बोले देखो जितने ध्रुव प्रहलाद नारद विभीषण आदि से बड़े बड़े भक्त थे, सब केवल भगवान के भजन करते थे, भगवान विष्णु के भजन करते थे, और सारे ब्रह्मा शिव देवी देवा सभी उनके प्रति प्रसन्न थे, सब प्रसन्न थे, उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन उनके छोड़ करके केवल शिव जी के ब्रह्मा जी के फॉलोअर हो गए, वे रावण कुंभकर्ण कंस अंडपाटी जितने सब थे, इस प्रकार आख्यास। बोले हुआ क्या उनका, समूल विनाश हो, सवन से नाश होकर रहे सब होकर, लेकिन वो विष्णु भजन करके उनके। तो इसी प्रकार प्रमाण के साथ, युक्ति के साथ जो तर्क में उनको निरुत्तर हो गए, सारे सारे जो तार्किक थे शाक्तवादी निरुत्तर हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने कई नास्तिक शाक्त गोष्ठी को भी उन्होंने युक्ति से परास्त करके उनको भक्ति में लाए थे, भक्त बनाए थे। तो रामचंद्र कविराज ऐसे घर में तो मन नहीं था, लेकिन प्रोफेशन था, उसमें घर में रुकते थे, तो रघुनंदन और मुकुंद आदि के साथ परामर्श करके वृंदावन जाने के लिए बड़ा इच्छा हुआ। तो उनसे गुरु जी तो वृंदावन में रहते थे, श्रीनिवास आचार्य, तो बोले गुरु चरण भी वृंदावन रहते हैं, तो आप मुझे परमिशन दीजिए। तो सब खंडवासी भक्तों से परमिशन लेकर के और रामचंद्र कविराज वृंदावन की ओर चल दिए। तभी जमाने में पैदल में चलना था, तो गया काशी होते हुए मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट स्नान किए, मथुरा में केशव दिया जी के दर्शन किए, तो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उनके श्री गुरु श्रीनिवास आचार्य को चरण में दंडवत प्रणाम किए। तो उन्होंने तब पढ़ रहे थे जीव गोस्वामी से, तो जीव गोस्वामी के साथ परिचय कराया, बोले देखो ये हमारे शिष्य आए हैं। तो सर गोस्वामी थे सनातन रूप, लोकनाथ और सौबाकियों से परिचय कराए, सभी रामचंद्र कविराज के रूप और गुण से बहुत प्रसन्न हुए। तो उनसे चर्चा करके पता चला बहुत बड़े योग्य विद्वान व्यक्ति है, तो उनके विद्वता से प्रसन्न होकर उनको कविराज आख्याति दिए, तो इसलिए नाम पड़ा रामचंद्र कविराज, गौरांग महाप्रभु के गुण लीला के पूरे अच्छे कुछ रचना उन्होंने किए हैं, काव्य रचना किए हैं, तो इसलिए कविराज नाम पड़ा उनका। तो वहां पे सभी गोस्वामी गण को भक्तगण का आशीर्वाद लेकर के उनको प्रसन्न करके अपने भक्ति के अपने व्यवहार के जितने रूप गुण था ऐसे ही बहुत दैन्य और बहुत सेवा भाव की बहुत नम्र भक्त थे। तो अपने सेवा भाव से अपने नम्रता से सारे वृंदावन के वैष्णव गण को प्रसन्न करके उनकी कृपा करके और अपने गुरु जी के नाम को रोशन करके श्रीनिवास आचार्य के साथ फिर उन्होंने गौड़ देश आए। गौड़ देश में आकर के खड़दह कालना मायापुर श्रीखंड जाजीग्राम सब जगह घूम घूम कर प्रचार किए। जब उन्होंने वृंदावन में थे तो जो तीन क्लासमेट श्रीनिवास ठाकुर उनके साथ दो और क्लासमेट थे उनके जिगरी दोस्त श्री नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद पंडित, इन दोनों के साथ उनका परिचय हुआ था। नरोत्तम ठाकुर भी बंगाल के थे, उनके घर कुमारपड़ा गंगा पार करने से खेतुड़ी, खेतुड़ी का बीच में गंगा है पद्मा है और इस तरफ उनका गांव। तो देखे कि हमारे पास के वो भी प्रसन्न हुए तो उनके रूप गुण से नरोत्तम इतने उनको अपने मित्र करके मान लिए और उनके भक्ति में उनके स्वभाव में इतने आकृष्ट हुए अपने प्राण प्रिय मित्र के रूप में उनको माने। और वहीं पर वृंदावन पढ़ाई करके नरोत्तम ठाकुर जो बाद में आए ढूंढ ढूंढ कर रामचंद्र का है उनके पास गए और रामचंद्र प्राय उनके साथ रहा करते थे नरोत्तम के साथ में, यद्यपि श्रीनिवास ठाकुर के शिष्य थे और श्रीनिवास ठाकुर के मित्र नरोत्तम था क्लासमेट थे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर के साथ हमेशा रामचंद्र के बजाय उनके पास रहते थे। ऐसे एक प्रसिद्ध घटना हुआ था कि एक समय नरोत्तम दास ठाकुर तो कायस्थ थे और रामचंद्र कविराज भी कायस्थ थे, तो एक समय उनका बड़े बड़े ब्राह्मण आकर के नरोत्तम दास ठाकुर में शिष्य बनने लगे नरोत्तम ठाकुर के। तो तभी जमाने में जातिवाद बड़े प्रचल था, बड़े प्रबल था, तो कुछ जाति गोसाई ब्राह्मण इकट्ठा होकर के वो तभी जमाने में इस क्षेत्र के राजा, तभी बंगाल और भारत एक ही था, बांग्लादेश इंडिया एक ही था, एक ही भारत वर्ष था, तो इसी क्षेत्र के जो भगवान गोला कुमार पड़ा खतुड़ी इस राजशाही के जो राजा थे नरसिंह भादुड़ी नरसिंह देव, तो उनसे पास कंप्लेन किए, बोले देखिए ये क्या काम कर रहा है, ये कायस्थ होकर के ब्राह्मण को मति भ्रम कर रहा है, ब्राह्मण को दिखा देने लगा सो ऐसे मिश्र त्रिपाठी पंडित ब्राह्मण उनको सब कर रहा है, अब रुकिए उनको सब नाश हो जाएगा, धर्म नाश हो जाएगा। तो और एक बहुत बड़ा ब्राह्मण पंडित रूप नारायण चक्रवर्ती, बड़े विद्वान तार्किक ब्राह्मण थे तभी जमान में, उनको हायर करके लेकर के आए और राजा के साथ और कई ब्राह्मण पंडित मिल करके बड़े ग्रुप करके नरोत्तम दास ठाकुर को जुक्ति करके परास्त करके उनको दंडित कर राज दंड देने के लिए बड़े ग्रुप करके साजी करके षड्यंत्र करके लेकर आ रहे थे। नरोत्तम ठाकुर विचार को पता नहीं थे, तभी जमाने तो फोन फोन ये हुआ नहीं करता था, मेल फेल के फटाफट मेल कर दे भेज दे व्हाट्सएप, तो पता नहीं था। तो लेकिन नरोत्तम ठाकुर के नित्य संगी मित्र रामचंद्र कविराज को पता चल गया, वो बड़े इस मामले में एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने उनका एक मित्र गंगा नारायण चक्रवर्ती जो नरोत्तम ठाकुर के शिष्य थे, बड़े प्रसिद्ध कुलीन ब्राह्मण थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के भक्ति उनके पांडित्य बल से देख करके अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ करके उनसे शिष्यत्व ग्रहण किए थे। तो इसी के चलते इसी क्षेत्र में बहुत बड़े सृष्टि हुआ बवाल की, ये गंगा नारायण चक्रवर्ती ये उनके कायस्थ के साथ शिष्य ले लिया नरोत्तम ठाकुर, ये क्या चल रहा है, सब बहुत बड़े बवाल सृष्टि हुआ था। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती को बुलाए, बोले आपको चलते बोले तुम आ जा, हम दोनों उनको डिफीट करेंगे, नहीं तो गुरु जी के पास आकर इंसल्ट करने चाहते हैं, उनको परास्त करना चाहते हैं। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज दोनों मिल करके, रास्ता था कि गंगा पार करके जाने से पहले कुमार पड़ा आएगा, कुमार पड़ा आएंगे फिर गंगा पार करेंगे भवन गोला से फिर खेतुड़ी ग्राम जाएंगे। तो इसी ग्राम में जिस रास्ता से कुमारपुर बाजार जब मार्केट होकर के गंगा पार होकर जाएंगे, यहीं पर बाजार में हाट बाजार में दो दुकान खोल दिए, दो शॉप खोले। तभी जमाने में ये होटल नहीं हुआ करता था, शास्त्र में भी लिखा है अगर पका हुआ अन्न बेचा जाता है तो कलिजुग का लक्षण ही है, तो इसलिए बना करके अन्न कहीं भी जाते थे लोग, तो बर्तन खरीदते थे, चावल दावल खरीद कर बनाकर खाते थे, बना बनाया चीज बेचा नहीं जाता था। लेकिन आज तो महाकाली युग में ये सब चल रहा है, बना बनाया का फास्ट फूड बना करके पैक करके फिर बेचते हैं उसको। तो बोले बनाना ही पकाया हुआ फूड बेचना मना गया है। तो इसलिए जो भी ग्रुप जाएंगे कहीं मार्केट में रहेंगे, जरूर खाना बनाने के लिए बर्तन और खरीदेंगे, और खाने पीने बाद में जरूर पान खाते थे, जरूर तांबूल खाते थे। पान समझते ना, हाँ तांबूल बोलते हैं उसको। तो उन दोनों ने बोले और राशन पानी दुकान क्या करेंगे, इमीडिएट फटाफट सब करेंगे, एक मिट्टी के बर्तन, क्योंकि मिट्टी के बर्तन ही चलता था, इसी में खरीद के भोजन बना दे, मिट्टी के बर्तन की दुकान और एक सुपारी पान की दुकान, ये दोनों इमीडिएट सब खोल दिए मार्केट में और बैठ गए। और जैसे राजा और ब्राह्मण के, ब्राह्मण सब पान खाने वाले, खूब पान खाने खाने वाले होते हैं सारे पंडित, हाँ एक एक मैंने कड़ा आप समझ 25-30 पान एक एक दिन में चुबा डालेंगे, हाँ हमेशा चुबाते चुबाते रहते हैं। तो सारे ब्राह्मण पार्टी राजा सब होते हैं रही पान, तो पान दुकान और सब मार्केट में आए, वही अपना टेंट लगाए, टेंट लगाए तो कुकिंग करने के लिए जरूर बर्तन खरीदेंगे, बाकी राशन पानी और पान तो खरीदेंगे, उनका बिना तो चले गए नहीं। तो जैसे सब खरीदने वाले आ गए बर्तन खरीद लेके पान खरीदने के लिए, तो दोनों का दुकान था नया, बोले नया दुकान से अच्छा रेट में देते हैं, उनसे खरीदते हैं। वो उनसे खरीदने आए, वो संस्कृत में बात करने लगे, वो हैरान हो, बोले पान दुकान ये मटका दुकान वाले ये संस्कृत बात करते रहते हैं संस्कृत भाषा में। तो उनके ब्राह्मण तो थे ही, ब्राह्मण थोड़ा बहुत संस्कृत बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत संस्कृत बोले, तो उनके साथ संस्कृत बोले तो बात करते करते सिद्धांतिक शास्त्रार्थ होने लगा, पॉइंट पर आने लगा। ये सब सारे ब्राह्मण शक्ति उपासक हो गए, विशेष करके नवदीप में जितने ब्राह्मण सारे शक्ति उपासक हुआ करते थे, आज भी कुछ कुछ बचे हुए हैं। तो इस कारण से तो रो तो भगवान विष्णु उपासक थे, तो युक्ति होने लगा, तो युक्ति से उनको वहीं दुकानदारी करते करते युक्ति से परास्त हो गए। तो धीरे धीरे उनके गुरुजी को बुलाए, उनके गुरुजी को बुलाए, बुलाते बुलाते रूपनारायण चक्रवर्ती को बुलाने पर, जो जो उनके मुख्य जिनको रेंट करके लाए थे विद्वान तार्किक ब्राह्मण थे, रूपनारायण चक्रवर्ती आए, उनके साथ भी भिड़ गए, वो तो बड़े पंडित थे इस क्षेत्र में। तो उनको भी लगा कि ये दुकानदार कोई साधारण दुकानदार नहीं है, ये पान बेचने वाले ही, तो हम तो हमारे पीछे पड़ गए। रूपनारायण चक्रवर्ती भी निरुत्तर हो गए, और राजा नरसिंह देव भी आए थे, उन्होंने जब देखे कि मेरे विद्वान पंडित सारे ब्राह्मणगण पूछ उठाकर भाग रहे हैं, से निरुत्तर हो गए ये दुकानदार के सामने, तो उनसे पूछे, बोले तुम तो दुकानदार है कौन, तुम्हारा परिचय दो, तुम्हारा आईडी कार्ड क्या है। तो आधार कार्ड तब जवान नहीं होता था कि आधार कार्ड देखा है, तो उनको पूछे आईडी, तो उन्होंने बताया कि हम ये खेतुड़ी ग्राम में श्री नरोत्तम दास ठाकुर के तुच्छ शिष्य हैं। वो सब सुनकर के कान खड़ा, बोले अरे तुम ठाकुर, उन्हीं के चक्रांत में हम जा रहे हैं, उनके साथ युक्ति करे परास्त करने के लिए, बोलते हैं उनके तुच्छ शिष्याति शिष्य दासानुदास, और ये दुकानदार है, दुकानदार का मारा दिए, हमारे दिमाग में दम कर दिए हैं, और उनके गुरुजी के पास जाएंगे क्या होगा। ब्राह्मण से बोले भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम खा पी लिए पान चुबाए, हमें हम गए बाबा, हम नहीं जानते। और रूपनारायण चक्रवर्ती और उनके राजा वो सब देखे कि ये बोलते हैं उनके शिष्य इतने विद्वान हैं, उनको परास्त कर दिए, तो और बोले सब ब्राह्मण बोले हम नहीं जाएंगे सर, तो वहीं से वापस आ गए और गए नहीं नरोत्तम दास ठाकुर से युक्ति करने के लिए। ऐसे वर्णन आता है कि वापस आ गए, वापस आकर के अपने राज्य में चले गए। उसी दिन रात को देवी दुर्गा ने स्वप्न में आए राजा नरसिंह देव के, आकर के बोले राजा तेरा सवन समय मार दूंगा, काल सुबह जाओ नरोत्तम से जाकर के उनके शरण में तूने अपराध किया, तू इस ब्राह्मण के शाक्तों के चक्र में पड़ करके उनका विरुद्ध चरण करना जाता था, तो अपराध हुआ है, तू मैं सवन से नाश करूंगा, जल्दी जाकर काल उनके शिष्यत्व ग्रहण करो। ये स्वप्न उठकर देखा, डर गया राजा, उठ करके सुबह स्नान करके किसको बिना बोले बिल्कुल चल पड़ा खेतुड़ी में, रास्ता चल पड़ा होंगे। और इधर से सेम स्वप्न हुआ था रूपनारायण को भी, जो विद्वान तार्किक ब्राह्मण थे उनको भी, तो वो भी सुबह उठकर गंगा स्नान को भी चल पड़े थे। फोन तो था नहीं कि पंड के, तो फोन बातचीत हो जाते, व्हाट्सएप में भेज देते कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन दोनों जाकर खेतड़ी ग्राम में जब मिले बोले पंडित जी आप कैसे, ना आप कैसे ना, मैं इसी काम के, मैं भी इसी काम के लाया, मुझे भी रात को सपना आया और देवी जी आ गए बोले कि मुझे भी देवी दर्शन हुए थे रात को। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो अपने भजन में थे, वो तो मंगल आरती करके भजन में रहते हैं, वो लोग लेट उठते हैं शक्त लोग, तो जो हो उठ करके जब नरोत्तम ठाकुर से मिले, नरोत्तम ठाकुर तो बड़े दैन्य की मूर्ति थे, सर भक्त लोग स्वभावत दैन्य होते हैं, जो विष्णु भक्त होते हैं उनका सबसे पहला पहचान होता है नम्रता, नम्रता सहनशीलता नीचता ये उनका सब गुण होता है दैन्यता। तो इसी गुण से गुणी थे नरोत्तम दास ठाकुर, बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके, राजा जी आप कैसे, पंडित जी आप कैसे मेरे घर के पास, उन्होंने प्रणाम कर बोले नहीं हम ऐसे ऐसे आए हैं, दुर्गा जी के स्वप्न हुआ वो धमकी दिए उन्होंने आपके शिष्य बनने के लिए आए हैं, कृपा करके ग्रहण कर, ना नहीं नहीं मैं तो पतित हूं मैं किसी, नहीं नहीं नहीं। तो उनके दैन्यता से देख करके और बहुत अपने आप को सरेंडर किए उन्होंने, राजा भी समझ गए वास्तविक यही महान व्यक्ति है और पंडित रूप नारायण भी समझ गए, तो उन दोनों ने उनके शिष्यत्व ग्रहण किए नरोत्तम दास ठाकुर के। तो इस प्रकार से इस रामचंद्र कविराज के प्रयास से श्री नरोत्तम दास ठाकुर का ये इज्जत बचा और इस क्षेत्र में ये वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। इस प्रकार से रामचंद्र कविराज अपने बुद्धि अपने विद्या के बल से इस क्षेत्र में जो प्रबल शाक्त क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे नास्तिक शाक्तों को उन्होंने भक्त में प्रवर्तन किए प्रचार किए। उनके छोटे भाई का नाम था गोविंद कविराज, वो भी श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बने और दोनों ही महाप्रभु के अति समर्पित भक्त थे। उनके जो पूजित विग्रह है आज भी इस भगवान गोला जो आजकल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट गंगा किनारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भगवान गोला जगह में जाएंगे तेलिया भादुड़ी ग्राम है वहां भी पूजित हो रहा है बाबा जी संप्रदाय में, रामदास बाबा जी के जो परंपरा है इसमें उनके रामचंद्र कविराज गोविंद कविराज उनके जो विग्रह हैं आज भी यहाँ उपास दर्शन कर हम लोग गए हैं एक दो बार दर्शन किए हैं। और जिस मार्केट में वो परास्त किए थे जो पान दुकान और मटका दुकान वो भी बड़े सुंदर मठ है, हम भी वहां भी गए एक दो बार, बड़े सुंदर स्थान है। ये सब गौरव मंडल के श्रीपाठ में आता है, ये सब दिव्य स्थान जहां पर ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व गौरगत प्राण भजनानंदी महात्मा इतने विद्वान पुरुषगण सब गौरांग महाप्रभु को भजन करके पूजा करके अपने आश्रम किए थे। तो उन्होंने कहते हैं गोविंद कविराज उनके एक भयानक बीमार हुआ था, बिल्कुल मरने के बेड में पड़े थे, लेकिन श्री रामचंद्र कविराज अभी गुरु के पास थे श्रीनिवास ठाकुर, और उनके पत्र आया उनके भाई का गोविंद कविराज का, इसे मृत्यु सज्जा में पड़े हैं। तो उनको बुलाकर लेकर गए, बोले कोई डरने की बात नहीं, उनके पदधूत जल को पी करके वो ठीक हो गए और कोई मेडिसिन जरूरत नहीं पड़ा। इस प्रभाव से देख करके कई लोग बदल गए, बोले बाप रे बाप इसी प्रभाव है। तो इसी प्रकार से सब भक्ति प्रचार कर रहे थे वो रामचंद्र कविराज, जिनके संग नरोत्तम दास ठाकुर जो खेतड़ी उत्सव फेमस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल महाप्रभु के लीला संवरण के बाद में जब उनका मेजर गौर पूर्णिमा उत्सव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गांव में खेतड़ी में सबसे पहले किए थे, सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड फेमस फेस्टिवल उसको खेतड़ी उत्सव करके प्रसिद्ध है। इस खेतड़ी उत्सव में भी एक मुख्य पार्ट लिए थे रामचंद्र कविराज, उनके राइट हैंड थे नरोत्तम दास ठाकुर के तभी भी। बाकी जाना माता आगरा आगरा सब रघुनाथ बहुत बहुत बड़े बड़े वैष्णव सब गए थे, इसी यहाँ रामचंद्र कविराज भी वहां थे और गोविंद कविराज दोनों ही थे। उसके बाद में रामचंद्र कविराज अपने आयु के अंतिम अवस्था में इन सभी से परमिशन लेकर के बोले और एक बार वृंदावन जाने की इच्छा कर रहा है, और तो सबसे परमिशन लेकर के उन्होंने दोबारा वृंदावन आए, लेकिन वृंदावन आकर के सारे गोस्वामियों के दर्शन करने का विकट इच्छा था उनके मन में, लेकिन गोस्वामी लोग सब पधार चुके थे कोई थे ही नहीं, तो बड़े दुखी हुए इन गोस्वामी के रूप सनातन आदि को दर्शन ना करके दर्शन पाए नहीं, जीव गोस्वामी नहीं थे। तो अंततः लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी दोनों के दर्शन मिला था उनका, उन दोनों के दर्शन करके और इतने दुखी हो गए, उनको गोस्वामियों के गुण को चिंतन करते करते वो भी अपने शरीर ब्रज में ब्रजरज में लीन कर दिए, ब्रजरज प्राप्ति किए। तो उनके समाधि 64 महंत के समाधि जो है यहाँ पर है, यहीं पर उन्होंने अंतिम लीला ब्रज में प्राप्त किए थे ब्रज में। तो इन्हीं के लिए श्री श्रीनिवास ठाकुर को प्रार्थना करते नरोत्तम दास ठाकुर, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम। रामचंद्र कविराज इतने गुणी गुणवान भक्त थे, इतने समर्पित भक्त थे, इतने सेवा अनुरागी भक्त थे, इसलिए ठाकुर नरोत्तम अपने श्रीनिवास आचार्य के पास बोलते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल उनकी संग चाहिए। जो उनके संग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि रामचंद्र कविराज कितने उच्च कोटि के भक्त होंगे, जिनके एसोसिएशन के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान व्यक्ति वो प्रार्थना करते हैं। इतने बड़े भक्त प्रार्थना आचार्य प्रार्थना करते हैं, कैसे व्यक्तित्व होंगे। तो आज इस रामचंद्र कविराज उनके ऐसे तो लिखा गया कि पौष कृष्ण तृतीया तिथि, लेकिन आज तो पंचमी है, महाकृष्ण पंचमी, जो भी हो इसी तिथि में उन्होंने ब्रज प्राप्ति किए थे, अपने लीला प्रवेश किए थे। इसे गौर गणदेश दीपिका में कहा गया है, यद्यपि गौरांग महाप्रभु के दर्शन उन्होंने नहीं किए रामचंद्र कविराज, लेकिन उन्होंने ब्रज लीला में श्री करुणा मंजरी थे, ये सब मंजरी सखी मंजरी तभी तो ये सब होंगे, वो सब क्यारी फॉरवर्ड होकर आए थे लीला करने के लिए, तो करुणा मंजरी थे। तो उनके जो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी गुण मंजरी थे, श्रीनिवास आचार्य तो उनके गुणगान करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के, तो उनके शिष्य श्री रामचंद्र कविराज उनके मुख्य शिष्य में से एक है। तो श्री रामचंद्र कविराज के आज तिरुभाव तिथि है। तो इससे उनके रामचंद्र कविराज के जीवनी से यही मैं जैसे कहा था कि पता चलता है कि जिनका जिनके साथ संबंध है, जो जिनके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हैं। आप कितने इधर उधर डिसिपल कोर्स करो, ये करो वो करो, कहीं इधर उधर नहीं होगा, घूम फिर करके वहीं पहुंचेंगे, कोई गड़बड़ अगर सही आपने कृष्ण को प्रार्थना किए हैं, हे प्रभु मुझे आपके चरण की सेवा करना है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तो भगवान ने ददामी बुद्धि योगंतम जैन माम उपयंति ते, जिस प्रकार भगवत चरण प्राप्ति हो सके तो उसी का मार्ग भगवान ने स्वयं देंगे और खींच खांच करके उन्हीं के गुरु जी के पास ले जाएंगे और वही उनका मिलन कराएंगे। ये बिल्कुल पूर्व जन्म से निश्चित है। यद्यपि भक्ति कोई कर्म के अधीन नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु शिष्य को मिलन है तो जन्म जन्म का मंत्र का फल है, वही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे पहली दृष्टि से यद्यपि विवाह करके जाते थे, लेकिन जैसे मिलन हो गया बोले ये तो अभी शादी किया, ये तो कई जन्मों के हमारे है। तो गुरु जी के पास आ गए, चतुर्थी रात्रि में वरकन्या के पति पत्नी के मिलन को छोड़ करके गुरु शिष्य का मिलन हुआ। और इस प्रकार रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य की और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की उनके तिथि प्राप्त करके उनके नाम उनके गुण को रोशन किए। तो इस प्रकार इतने गुणवान भक्त जिनके संग श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, तो आज उनके तिरुभाव तिथि है। तो हम सभी जो भक्त तो बने नहीं, बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं भक्ति का अभ्यास, तो हम लोग जब उन्हीं भक्तों के संग तो नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर जिनके संग प्रार्थना करते हैं, हम क्या प्रार्थना करेंगे, हम तो देखे ही नहीं, अभी सुनते हैं थोड़े बहुत इधर इधर उधर पढ़ पाड़ करके। तो हम वही उनके गुणा आलोचना करेंगे और उनको प्रार्थना करेंगे कि आप वही वैकुंठ से या आपने लीला स्थली से जहां से भी आप होंगे, नरोत्तम रामचंद्र ये सभी अभी भी होंगे, क्योंकि जब वो उनका संग चाहते हैं अभी भी दोनों कहीं भी होंगे, नरोत्तम ठाकुर होंगे और श्री रामचंद्र कविराज भी उनके साथ होंगे, कहीं भी हो श्री भगवत लीला स्थली में, कहीं लीला में होंगे नित्य लीला में, यहां से आज आपके इस तिथि के समय हम इस वृंदावन धाम में अगर आपके इसी चरण में श्रद्धांजलि देने के लिए चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं हृदय से, तो उनको पास वो पहुंच जाता है प्रार्थना। उन्होंने नित्य लीला से थोड़ा सा तिरछी चितवन से दृष्टिपात कर दें तो इस दुरात्मा पतित आत्मा का जीवन सुधार हो सकता है, सफल हो सकता है और भक्ति में फल फूल सकता है। तो अगर कोई भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे महाभक्तों की कृपा बहुत ही आवश्यकता है, और ऐसे भक्त जिनका संग सख्या श्री नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे भक्तों का तिथि में तो उनके श्री चरण में श्रद्धांजलि की प्रार्थना के द्वारा, इस उनके गुण वर्णन के द्वारा उनके चरण में हम श्रद्धांजलि आज करेंगे उनकी तिथि में। और आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के भी आविर्भाव तिथि है। अब समय केवल 5 मिनट है, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी वो गोस्वामी है जो 6 गोस्वामियों से एक हैं, और इन 6 गोस्वामियों से 2 गोस्वामी थे जो पक्के ब्राह्मण परिवार के थे, एक रघुनाथ भट्ट और एक गोपाल भट्ट। रघुनाथ भट्ट थे, उनके पिताजी का नाम तो तपन मिश्र था, लेकिन ये भट्ट एक टाइटल उनको मिला था। रघुनाथ भट्ट बड़े भागवत गान करने में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट राइटर भागवत, इसलिए भट्ट मिला। गोपाल भट्ट उनके परिवार से भट्ट थे बड़े, वो उनके पिताजी वेंकट भट्ट, प्रबुद्ध भट्ट, तिरुमल भट्ट, ये 3 भट्ट, श्री रंगनाथ, दक्षिण में श्री रंगनाथ के प्रधान सेवको उनके पिताजी थे, तो उनके एकमात्र पुत्र थे, 3 भाइयों में एक ही पुत्र थे गोपाल गुणमंजरी। तो महाप्रभु के साथ उनका भेंट वहीं पे हुआ था। तो महाप्रभु स्वयं उनको नीव भक्त ट्रेनिंग दिए थे, आपने खुद उनके ट्रेनर थे, 4 महीना में उनको ट्रेनिंग कोर्स कराए थे वहीं रहकर उनके घर में उनको, और उनको ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग दिए, बोले शादी ना करना, लेकिन कोई आश्रम ज्वाइन करने के लिए नहीं, बोले घर में रहो, माता पिता की सेवा करो। उनके पिताजी के बोल दिए थे, बोले मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि 4 महीना जिनके घर में साक्षात भगवान रहेंगे तो क्या हालत होगा। तो उनको बोल दिए थे, तो लगभग 11-12 साल के उम्र था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के, जब उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और उनके सेवा, उनके स्पर्शन, उनके सानिध्य प्राप्त किए थे। उसके बाद में 4 महीने के बाद महाप्रभु चले गए, तो उनको आदेश दे गए कि आपने पिता माता की सेवा करो, पिता माता के अंत में आप वृंदावन में जाना। तो लगभग 20 साल तक उन्होंने घर में रहे, 20 साल तक घर में रहे, और उनके माता पिता के अंत में उन्होंने घर में, जो उनके चाचा जी उनके टीचर थे, उनको पढ़ाते थे प्रबुद्ध भट्ट, जिन्होंने महाप्रभु 4 महीना के संग प्राप्त करके उन्होंने धर्म अपने संप्रदाय बदल करके, श्री संप्रदाय से बदल करके गौड़ीय हो गए थे, और प्रबुद्धानंद सरस्वती गोस्वामी वही हैं, तो उनके पास आ गए थे, उनके पास थे, उन्हीं के ही दीक्षा शिक्षा शिष्य बने। तो अंततः श्रीमन महाप्रभु का दर्शन और नहीं हुआ था, उन्हें आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन, लेकिन महाप्रभु तो मिले नहीं। महाप्रभु उनको पुरी से अपने आसन डोर कोपनी भेजे, और महाप्रभु के दर्शन उनको श्री शाड़ग्राम के रूप में दर्शन हुआ, और उनके सेवा के भावना से इस शाड़ग्राम से भगवान साक्षात स्वयंभू श्री राधा रमण विग्रह प्रकट हुए। श्री राधा रमण देव के प्राकट्यकर्ता श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो महाप्रभु के साक्षात ट्रेंड अप डिवोटी, संस्कार दीपिका और संस्कार सत्क्रिया सार दीपिका और वैष्णव सिद्धांत माला के रचयिता ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो लगभग लंबे समय तक इस वृंदावन में रहे, तो उनके बारे में प्राय कहीं वर्णन नहीं मिलता प्रामाणिक ग्रंथ में। अब श्री चैतन्य चरित्र के रचयिता श्री कविराज गोस्वामी, लोचनदास ठाकुर, वृंदावनदास ठाकुर, उनके रचना में उनका नाम मात्र केवल मिलता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रधान शाखा है दक्षिण में, एक प्रधान शाखा, प्रेम शाखा, बस इतना ही, कहीं में पता चलता है कि श्री कविराज गोस्वामी वृंदावन में ही चैतन्य चरित रचना की रचना करते समय गोस्वामी गण थे वृंदावन में, तो उन्हीं के आदेश से उन्होंने चैतन्य चरित रचना की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, प्रणाम किए, बोले मैं चैतन्य लीला लिखना चाहते हैं, आप तो साक्षात उनके द्वारा ट्रेंड अप है, साक्षात कृपामूर्ति है उनसे, तो आप आशीर्वाद दीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ, एक कंडीशन, मेरा नाम इसमें नहीं लिखना तेरे किताब में, मेरा बारे में नहीं लिखना, लेकिन हमारे पास कोई आते है मेरा बारे में जरूर लिखना, मैं तुझे बता मेरा नाम नहीं आया। लेकिन ये ऐसे थे, ऐसे धन्य की मूर्ति होते हैं, अपना नाम बढ़ाई नहीं चाहते थे, उनको स्ट्रेट मना कर दिए, बोले कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो इसलिए उनके वर्णन मिलना बड़ा मुश्किल है, केवल भक्ति रत्नाकर ग्रंथ इसी से कुछ उनका विवरण प्राप्त होता है, नहीं तो इविन चैतन्य चंद्रामृत के कवि कर्ण के ऊपर कोई उनके बारे में खास लिखे नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि महाप्रभु के एक प्रसिद्ध परिकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और जिनके श्री राधा रमण देव लाल उनके परंपरा से अभिपूजित विग्रह वृंदावन में है। तो इसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में अब हर साल सुनते हैं और फिर सुनेंगे उनकी त्रिभाव तिथि में। तो अभी आपका समय हो चुका है, श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, समवेत भक्त वृंद की।